इसलिए कि जिसने आखर किसने कहा है हमें आखिरत के बारे में, किसने बताया? अल्लाह ताला ने बताया ना, अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि उसके ऊपर ईमान रखो। ईमानियात में से एक ईमान आखरत पर ईमान भी है। अब आखरत का ईमान अगर किसी में नहीं है तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ है, 6 हैं अरकान ईमान के, पता है ना आपको। उन सब के ऊपर ईमान रखना इक्वली इम्पोर्टेंट है। और अगर इनमें आखरत पर ईमान मिसिंग है, या अच्छा ये भी अब एक बात और समझ ले, ईमान का मतलब ये नहीं कि मैं अपने जहन के अंदर एक आखरत के बारे में खाका रख के और उसके बारे में खुद ही कुछ सोचा हुआ है कि क्यामत के दिन का मतलब ये है कि सारों की बख्शिश हो जानी है, सब ने जन्नत में चले जाना है, सब ऐसे हो जाएगा। अच्छा वो मेरी अपनी बातें हैं, अपने दिमाग की। अब हाँ जी, मैं तो क्यामत पे ईमान रखती हूँ, और क्या ईमान है वो जो मेरे जहन के अंदर, ये ईमान नहीं चाहिए। ईमान वो जैसे कि अल्लाह ताला ने बताया उस मुताबिक ईमान रखना जरूरी है, उस मुताबिक ईमान होना चाहिए जो जो बात अल्लाह ताला ने बताई कि इस तरह होगा, ऐसे होगा, ये चीज। जैसे अब शिफात की बात आई, अब शिफात का अकीदा मैंने अपना नहीं कुछ बनाना कि मेरे अपने दिमाग में ये आता है, मैं समझती हूँ जी कि फलां हाफिज़े कुरान भी शिफात करेगा तो फलां मेरी शिफात कर देगा और ये तो जरूर शिफारसी होगा और ये भी हो, ऐसे नहीं। बल्कि जैसे अल्लाह ताला ने बताया, जैसे अल्लाह के नबी ने हमें बता दिया, उस तरह से यहां पर बताया गया। जो ईमान नहीं रखते अल्लाह की मुलाकात का, अल्लाह ताला से मिलने का, क्योंकि इस अकीदे का बहुत असर होता है इंसान की जिंदगी पे। जितना ये अकीदा स्ट्रोंग होगा ना, उतना ही इंसान की ये बोलती बंद हो जाएगी, अमल पे ज्यादा तवज्जो होगी, बातों पे कम। जितना ये अकीदा कमजोर होगा, बातें बहुत हैं, बहाने बहुत हैं, दलीलें बहुत हैं, इधर उधर की बातें बहुत हैं। आखरत के ऊपर, अपनी फलाह के ऊपर, इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। क्योंकि जब आखरत का अकीदा स्ट्रांग होता है ना, इंसान की परेशानी ही और हो जाती है, इंसान की फिक्रें ही और हो जाती हैं। तो ये लोग जो जब इनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, तो इनके दिल जो हैं घुटने लगते हैं। इश्मा अज़द का मैंने आपको क्या बात बताई कि इनके सीने घुटते हैं, यानी अब इनको इनके सीने भींचने लगते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता। किन बातों में इंसान का दिल लगता है? वो बातें जो उसकी उसके मुताबिक होती हैं, जो जो उसकी पसंद की होती हैं, जिन चीजों से वो मोहब्बत करता है, उनमें इंसान का दिल कितना खिल उठता है ना। और जिन बातों में उसकी दिलचस्पी ना हो, जिन चीजों को वो पसंद ना करता हो, उनसे दिल घुटता है। ऐसा ही है ना। तो अल्लाह ताला ने काफरों के बारे में ये बताया कि उनका दिल घुटता है एक अल्लाह के जिक्र से, वह ईजा और जा, और उलट है फिर उसके बाद। और किसके जिक्र से उनका दिल बड़ा खुश होता है? वह ईजा जुकिर और लदीना मिन दूनी ही ईजा हम यस्तबशिरून, जब उनके अलावा के बारे में बात की जाती है तो उनके दिल खिल उठते हैं, खुश हो जाते हैं। अब अलावा के बारे में किसकी, यानी जब बुतों की बात की जाए, जब इधर उधर की बातें की जाए, तो बड़े दिल उनके खुश होते हैं। आज भी आप देखिए, ये तो काफरों की बात हो रही है ना, मुशरिकीन का हाल है, लेकिन आप ये देख लें कि जिन लोगों का अकीदा आखरत स्ट्रोंग नहीं है या सिर्फ बातों में है, उसके बाद वो क्या कहते हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है? तो उस वक्त उनके सीने घुटने लगते हैं, तंग होने लगते हैं। और दूसरों की बातें की जाती हैं, किसी मसलन 7 बीबियों की कहानी की बात आ गई, पीरों फकीरों की बातें आ गई, इसी तरह फलां किस्सा, उसके किस्से, अपने मन घड़त किस्से, जी ऐसा हो गया, उसने ये किया तो ये हो गया, पता नहीं क्या, कोई ऐसा ही चमत्कार हो गया। उन बातों के अंदर बहुत दिलचस्पी है, लेकिन कहीं कुरान की आयत आ जाए, उनके सामने पढ़ी जाए, उसका तर्जुमा बयान किया जाए, हदीस बयान की जाए, उसके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं। ये किससे कहानियां सुनाते जाओ हमें, इनके उनके उनके, भाई औलिया अल्लाह के किस्सों को हम बड़ा इंजॉय करते हैं। ये ठीक है, औलिया अल्लाह हैं, उनके किस्से हैं, लेकिन जब एक अल्लाह की बात आती है, कुरान की बात है, कुरान तो अल्लाह का कलाम है, उसमें क्यों दिल घुटता है? इससे भी आगे चले जाएं, जिनका बिल्कुल ही ईमान कमजोर है आखरत के ऊपर, फिर उसके बाद उनका हाल क्या होता है? उनका हाल तो ये होता है कि अल्लाह की बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आती, बिल्कुल पसंद नहीं आती, बल्कि चैनल चेंज कर देते हैं। जहां पे कोई दर्स हो रहा है वो नहीं अच्छा लगता, वो दूसरी दूसरा चैनल अच्छा लगता है, जहां पे गाने चल रहे हैं, जहां पे और चीजें हो रही हैं। इसी तरह मजलिसों में देख लें, बाहर लोगों को इतने दिल की तंगी होती है अल्लाह के जिक्र से कि वो बस कहते क्या, फिर वो बोल टॉपिक शुरू कर दिया। नहीं, उनका दिल घुटता है, उनसे सुना भी नहीं जाता, और अगर कहीं कोई बुला ही ले दर्स के ऊपर तो इतनी देर में जाना कि खत्म ही हो चुका हो, क्योंकि हम जाके अपनी बातें करें, जरा मजा करें, कुछ इंजॉयमेंट होनी चाहिए। ये क्या बोर बातें लेके बैठ जाते हैं, वो जाते हैं उस वक्त ताकि सब खत्म हो जाए और हल्ला गुल्ला शुरू हो जाए, उसमें मजा आता है। इसी तरह अगर कोई टॉपिक आ जाए ऐसा बातों बातों में, तो फौरन टॉपिक चेंज कर देते हैं। अच्छा, उनको उनके सामने कोई अल्लाह की बात की जाए ना, तो उनको याद आ जाता है कि अभी हमने कोई फोन पे चेक करना है, कुछ फोन पे टेक्स्ट चेक करना शुरू हो जाएंगे। मजलिस में बैठे में अल्लाह का जिक्र हो रहा है और फोन चेक कर रहे हैं, क्योंकि दिल नहीं लग रहा ना। ये अलामत इस चीज के, दिल नहीं लग। देखिए, जहां पे आपका दिल लगता है, कोई मूवी चल रही हो, कोई ड्रामा चल रहा हो, उसका कहते एक सीन भी ना इधर से उधर हो। अगर किसी ने उठा दिया, कुछ कहना पड़ गया किसी को कि ये चीज ला दो, तो उतनी देर भी लाने लाने में भी गर्दन मुड़ी होती स्क्रीन की तरह कि एक सीन भी ना चला जाए, पॉज करके जाते हैं कि एक एक डायलॉग भी मिस ना हो जाए। नहीं, लेकिन जब अल्लाह की बातें आती हैं तो इतने रिलैक्स थे हम, क्या हमें मजा ही ना आए? ये तो हमारी रूह की गिज़ा होनी चाहिए। और वाकई जिनके लिए होती है, यकीन करें, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, अगर एक जगह दर्श हो रहा होता है ना, वो गुजर रहे हैं पास से, वो जानते नहीं है। एक हम रेस्टोरेंट में थे, वहां पे दर्श चल रहा था, तो कोई लोग आए, वो उनकी भी कुछ कुछ वो वहां पे भी खाना खाने आए थे, वो खातून वहां से उठ के हमारे पास आ गई, कह रही मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को ये देख के किस तरह अल्लाह का जिक्र करें, जिनके अंदर मोहब्बत हो। देखे, इसी तरह हम हरम में कई दफा ऐसा होता है कि बात की जा रही हो, कोई अल्लाह का जिक्र किया जा रहा है, कोई छोटा सा दर्स हो रहा है, तो कोई लोग जो रैंडमली इधर उधर बैठे हुए हैं वो भी उठ के आ जाते, जिसका दिल हो, जिसका शौक हो, वो तो ढूंढता है ऐसी मजलिसें, वो तो तलाश करता है ऐसी बातों को, उसका दिल करता है कोई ऐसी बात करे। और जिनके दिल दूसरी चीजों में लगे होते हैं, उनका हाल ये होता है कि उनके दिल को ऐसी बेचैनी लग जाती है, जमाइयां आने लगती हैं। इसीलिए तो कभी फोन चेक करेंगे, कभी इधर उधर देखेंगे, कभी बच्चे से खेलना शुरू कर देंगे कि बस खत्म हो। हमें देखना चाहिए, हम सबको अपने दिल का जायजा लेना चाहिए कि इन टॉपिक्स को हम इंजॉय करते हैं और किन बातों पे हम कहते हैं लो अब फिर शुरू हो गए। अच्छा, मुंह से चाहे नहीं बोल रहे, दिल में कह रहे हैं कि क्या, फिर यही वाली बातें, फिर ये टॉपिक लेके बैठ गए। या कौन सी मजलिसें हैं जिनको अंदर हमें मजा आता है, कौन सी मजलिसें हैं जिनको हम एंजॉय करते हैं? कोई ढोलकी पे बुला ले, कोई मेहंदियों पे बुला ले, शादियों पे बुला ले, तो हम कितने खुश होके जाते हैं। और कोई अगर कोई दीन की मजलिस पे बुला ले, तो फिर हमारा हाल क्या होता है? नहीं, मौसम ठीक नहीं है, नहीं आज सर में दर्द हो गई, नहीं बच्चे को स्कूल से लाना, नहीं फलां चीज हो गई। लेकिन ऐसी जो दूसरी मजलिस है, वो हमारे पास कोई वो नहीं होता, बल्कि उसमें शौक से जाते हैं। सर में दर्द भी है तो गोली खा के चले जाएंगे। तो हमारे शौक क्या है? यहाँ पे तो मुशरिकीन की बात की गई कि उनके सीने घुटते हैं, हम तो मोमिन मुसलमान अपने आप को कहते हैं, हमारे भी अगर अल्लाह के जिक्र में दिल ना लगे, उन मजलिसों में दिल ना लगे, हम इनको कभी हमें मजा ही ना आए, हमारे मजे ही कुछ और हैं। मर्दों के लिए देख लें तो अगर उनको पूरी रात स्पोर्ट्स की कोई मैच, कोई क्रिकेट मैच के लिए सारी रात भी जागना पड़े तो कोई मसला नहीं, पूरी रात गुजर जाती थकते नहीं। लेकिन वही अगर कोई एक आध घंटे का लेक्चर हो, या इमाम साहब अगर नमाज ही लंबी कर दें तो कहते लो देखो कितनी लंबी नमाज पढ़ा दी। तो देखिए हमारी शौक क्या है, हमारे दिल किधर लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने आप को तो बहुत बड़ी चीज समझते हैं, लेकिन हमारे दिलों पे गफलतों के पर्दे पड़े हैं, हमारा ईमान आखरत पे कमजोर है। क्योंकि यहाँ पे कहा गया जिनका ईमान आखरत पे नहीं है उनका ये हाल होता है। हम तो कहते हैं हमारा ईमान है, लेकिन मे भी वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए कभी कभी सुनना तो ठीक लगता है लेकिन ज्यादा भी ना करो, हमारा मजा खराब हो जाता है। थोड़ी देर की बात कर ली बस ठीक है, इतना ही काफी है, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। तो अपने दिलों का हम जायजा लें, हमें खुद अपनी रियलिटी पता होनी चाहिए, किसी के लिए नहीं अपने लिए, हम खुद जाने हम किधर खड़े हैं। तो नोट किया करें अपने हालात को। देखिए दूसरों का जिक्र होता है चिल उठते हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस की बात हो, फिल्मों ड्रामों की बात हो, आज के कपड़े क्या चल रहे हैं, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, खिल जाते हैं चेहरे, चेहरों से पता चल जाता है कि कितनी खुशी है, बढ़ बढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। अल्लाह अकबर, कहीं कुरान हमारे ही तो नहीं पोल खोल रहा। कुल कह दीजिए, कुल क्यों कहा जाता है जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो जिम्मेदारी है सारा कुरानी लोगों को समझा देना, बता देना, पहुंचा देना, फिर ये क्यों कहा जाता है कुल कुल हुवा अल्लाहु अहद, कुल या और जगहों पे आता है, इसलिए कि जब कुल आए ना तो समझ आया करें कि ताकीद के लिए, यानी ये बात इंपॉर्टेंट है, आप कह के बता दें इनको। वैसे तो सारा कुरान ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट बात है, ये कुल के साथ कही गई। अल्लाहुम्मा फातिर अस्समावात, अब ये जो आयत है ना इसके बारे में मारफुल कुरान में है कि सईद बिन जुबैर फरमाते हैं मुझे कुरान की ऐसी आयत मालूम है कि उसको पढ़ के जो दुआ भी की जाती है वो कबूल होती है। तो आप ज्यादा तवज्जो से सुने, अल्लाहुम्मा 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 क्यों आता है, अल्लाहुम्मा का तर्जुमा आपने क्या लिखा, या अल्लाह ए अल्लाह, राइट? तो ये तो या अल्लाह नहीं है, ये तो अल्लाहुम्मा है। कभी और आपने इस पे किया? असल में जो इसका मतलब है ना, या ये एक्चुअली या अल्लाह ही है, अल्लाहुम्मा जो है आखिर में जो इसके मीम है वो या की बदल में आई है, या की जगह आई है जो आखिर की मीम है, वरना क्या होता या अल्लाह, ठीक है? तो या अल्लाह जब कहा जाता तो फिर शुरू में क्या होता, या होता, अल्लाह का नाम ना होता, तो इसलिए ताकि शुरू में अल्लाह का नाम आए इस वजह से या की जगह पे मीम एंड में लाई गई, ठीक है? अब आप जब भी अल्लाहुम्मा वाली दुआएं पढ़ें तो समझ लें कि अल्लाहुम्मा मीन्स या अल्लाह, लेकिन हम या को एंड में लेकर आए हैं और अल्लाह का नाम पहले लाए हैं, ठीक है? ताकि शुरुआत अल्लाह के नाम से या से ना हो, सही? फातिर समावाति वल अर्द, फातिर फातिर मतलब ऐसा पैदा करने वाला जो ऐसे पैदा करे कि जिससे इससे पहले कोई चीज नमूने के तौर पे नहीं थी, इससे पहले कोई चीज इसकी मिसाल नहीं थी। अल्लाह ताला इसका मतलब ओरिजिनेटर है, यानी शुरू ऐसा नहीं था कि आसमानों जैसी कोई चीज पहले भी थी, जमीन जैसी कोई चीज पहले, वो फर्स्ट टाइम पैदा करने वाला, आसमानों का और जमीन का आलिम अल गैबी व शहादा, आलिम जानने वाला गैब का और हाजिर का। गैब हमारे लिए गैब है, अल्लाह ताला के लिए कोई चीज भी गैब नहीं है। उसके लिए हर चीज ही जाहिर है, लेकिन जो चीजें हमारे लिए गैब है वो बताई गई, वो उनको भी जानता है। जैसे मुस्तकबिल हमारे लिए गैब है, हमें क्या पता मुस्तकबिल में क्या है, आज शाम ही क्या होना है मुझे क्या पता, और फिर कयामत के दिन क्या होना है अल्लाह ताला को ये भी मालूम है। और ये दो सिफात अल्लाह ताला की लाई गई ना, फातिर समावाती वल अर्द और आलिम अल गैब व शहादा, कोई और अगली भी आ रही है बात, लेकिन कोई इनमें अल्लाह का शरीक नहीं है, ना कोई नबी, ना कोई वली, ना कोई फरिश्ता, कोई भी आसमानों जमीन की पैदाइश में अल्लाह ताला का साजी, उसका शराकत दार, पार्टनर नहीं था। और दूसरे गैब का जानने वाला कोई नहीं है। ये जो हम अकीदा अगर रखते हैं, या ये जो हमें सोच आती है कि फलां मेरे हाथ की लकीरें देख के मेरा फ्यूचर बता देता, तो फ्यूचर गैब है, अल्लाह उसको जानता है सर। और इसी तरह और भी कोई भी चीज, ये चीज ठीक है हमारे लिए करनी या नहीं ठीक, फलां बाबे के पास चले जाओ वो बताएगा, ये कारोबार करूं या नहीं करूं, मेरा वीजा कब आएगा, शादी इससे करनी सही है या नहीं सही, ये सब गैब की बातें हैं। अपने ईमान को मत गंवाएं ऐसे लोगों के पास जाके, वो कार्ड से कोई बता रहे हैं, कोई किसी चीज से, पता नहीं अल्लाह जाने क्या क्या चीजों, और कोई तो अल्लाह माफ करे कुरान से फाले निकालने खोलने बैठ जाते, कुरान को पता नहीं खुद ही बना के फाल निकाल रहे हैं जी हम कुरान से, गैब को मालूम करने के लिए। गैब का जानने वाला तो सिर्फ अल्लाह है, तो अगर कुरान को इन चीजों के लिए इस्तेमाल किया तो गलत इस्तेमाल किए ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बातें सिखाई हैं हमें ना, सहाबा ने कभी की, एक बिदत शुरू कर दी। आलिम अल गैबी व शहादा, अल्लाह ताला है गैब का भी और हाजिर का भी जानने वाला। इसी तरह माजी भी हमसे गैब है, हमें क्या पता आज से 1000 साल पहले इस जगह पे क्या हुआ था, इस बंदे के साथ फलां के साथ क्या हुआ था, इसकी जिंदगी क्या थी, ये सब हमसे गैब है, वो उसका जानने वाला कामिल इल्म रखता है। कामिल कामिल, ये नहीं ये थोड़ा बहुत, पूरा का पूरा इन एंड आउट उसका जानने वाला, जाहिर और बातिन को जानने वाला। हमारे तो सामने भी कोई बैठा हो उसके दिल में क्या है वो हमसे गैब है ना, वो हमारे सामने है, हम उसका दिल तो नहीं खोल के देख सकते, वो हमारे लिए गैब है, अल्लाह ताला उसको जानता है। अल्लाह अकबर, अंत तहकुम बैन इबादिक फीमा कानू फीही यख्तलिफून, तू फैसला करेगा अपने बंदों के दरमियान उन चीजों में जिनमें वो इख्तलाफ करते थे, अल्लाह तू ही फैसला करने वाला है अपने बंदों के दरमियान। अब ये देखें ये कि अल्लाह ताला ही फैसला करेगा, किसी और को फैसले की कुदरत हासिल नहीं, किसी और को इख्तियार नहीं कि वो फैसला करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद की नमाज में पढ़ते थे तो किस दुआ से शुरू करते थे, ये किसी ने आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ बताई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बा जिब्रील व मीकाल व मीकाईल व इसराफील फातिर السماوات والارض, यही वाली आयत, आलिम الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, एतिनी लिमा اختلف فيه, ऐ अल्लाह मुझे हिदायत दे देना इसमें जिसमें के लोग इख्तलाफ करते, मिन الحق بإذنك, हक की बात की अपने इज़न से, इन्नका तहदी मन तशाउ इला सिराते मुस्तकीम, तू जिसको चाहे हिदायत दे सिराते मुस्तकीम की, इस ये यानी ये आयत उसमें आती थी। और ये एक और भी दुआ, लंबी दुआ है, लेकिन उस हदीस के एक रावी मुरसिल हैं तो इसलिए वो मैं नहीं बयान करूंगी, मगर पता चलता है कि इस आयत की वैसे बहुत अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है, इसलिए क्योंकि ये इससे दुआएं भी कबूल होती हैं, और किसी ने पूछा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये पढ़ो, अल्लाहुम्मा फातिर समावाती वल अर्द आलिम अल गैब व शहादती ला इलाहा इल्ला अंत रब्बा कुल्ली शेई व मलीका أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. یہ صبح شام کی دعاؤں میں بھی آتا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ میں صبح شام کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کی خاص کوئی اہمیت ہی ہے نا. اور میں نے آپ کو جیسے یہ بھی بتا دیا کہ یہ دعائیں بھی اس سے قبول ہوتی ہیں. تو بغیر نمونے کے جو پیدا کرنے والا اور جو جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے نے مجھ سے عہد لیا تھا، اس عہد کو پورا کرو جو میں نے آپ کو تہجد کے وقت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں یہ دعا کرتے تھے. اور اس کے اندر یہ آیت ہے وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور اگر چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جو جو اگر جو ان کے جن کے پاس جنہوں نے ظلم کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جو زمین میں ہے، یعنی جتنے خزانے زمین کے، اور اس کی مانند ہے کہ وہ چاہیں گے کہ وہ فدیے میں دے دیں اس سب کچھ کو قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، اور برے عذاب سے بچنے کے لیے. عذاب تو ہوتا ہی برا ہے، لیکن اس کی انٹینسٹی کو بتانے کے لیے وہ کتنا برا ہوگا. یہ لایا گیا کہ اگر وہ چاہیں گے کہ روئے زمین میں جتنی چیزیں ہیں، اول تو کسی کے پاس ساری زمین ہے ہی نہیں، کوئی بھی مالک نہیں، لیکن اگر کوئی مالک ہو بھی اور اس دن اس کو کہا جائے کہ کیا یہ سب دینے کو تیار ہو، تو وہ دینے کو تیار ہو جائے گا، کہے گا بس مجھے آج کے دن کے اس عذاب سے بچا لو، صرف اس عذاب سے بچا لو. یعنی اتنا زیادہ انسان تکلیف میں ہوگا. لیکن اس دنیا میں بھی کسی کو کوئی بیماری لگ جائے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، تو وہ اپنی ساری پراپرٹی بیچ دیتا ہے، سب کچھ کر دیتا ہے، کہتا بس میں بچ جاؤں، اس بیماری سے کسی طرح نکل جاؤں. تو قیامت کا دن کا عذاب تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اس سے بچنے کے لیے تو انسان کہے گا میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں. تو انسان یہ سوچے کہ اس دن اگر سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا اس عذاب سے بچنے کے لیے، تو کیوں نہیں اسی دنیا کے اندر انسان کچھ اللہ کی خاطر لگا دے تاکہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جائے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا جہنمی سے، ایسے جو جہنم میں پڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ کیا آج کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے تم کچھ دینے کو تیار ہو؟ یہ اگر تمہارے پاس ساری زمین کی سب چیزیں تمہارے پاس آ جائیں تو کیا تم دینے کو تیار ہو؟ وہ کہے گا ہاں میں دینے کو تیار ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو تم سے اس سے بہت کم مانگا تھا. کیا مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ صرف یہ کہ تم توحید پہ رہنا، صرف اپنی فرما برداری چند دن کی زندگی میں مانگی تھی، وہ بھی نہیں تم سے ہوا. اب تم ساری زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب دینے کو تیار ہو گئے. اسے بہت کم تھا جو وہاں پہ تھا جو دے سکتے تھے اور انسان بچ سکتا تھا.